ओम शांति, ओम शांति। आज हम सबके बीच में परम आदरणीय उषा दीदी जी विराजमान हैं। हम सभी एक हाथ की ताली से आदरणीय दीदी जी का स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आप में से बहुत सारे भाई बहन आदरणीय दीदी जी को जानते हैं और बहुतों ने लाइव भी देखा होगा और बहुतों ने टीवी पर भी देखा होगा। तो आज हम सबके बीच में एक बहुत सुंदर टॉपिक लेकर के आदरणीय दीदी जी आए हैं। कुछ नए भाई बहन हैं, उनके लिए मैं दीदी जी का संक्षिप्त परिचय कराना चाहती हूँ। आदरणीय उषा दीदी जी बहुत छोटी सी आयु में, मात्र 12 वर्ष की अल्प आयु में आपको साउथ अफ्रीका से ये ज्ञान प्राप्त हुआ। सन 1980 में आपने अपना जीवन, संपूर्ण जीवन मानव कल्याण और विश्व सेवा के लिए समर्पित कर दिया। सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप कोर्स के आप जन्मदाता हैं। उससे पहले बाबा का ज्ञान आत्मा परमात्मा का सुनाया जाता था, लेकिन आपने सेल्फ को मैनेज कैसे करें इस कोर्स को जन्म दिया। और आपने सबसे पहले ये कोर्स नागार्जुन फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड से शुभारंभ इसका किया था। और आप सबने रामायण गीता इसका बहुत सुंदर आध्यात्मिक चित्रित रूप में रहस्य भी सुना है आप में से बहुत लोगों ने। और बहुत सुंदर स्पष्टीकरण होता है रामायण और गीता का आदरणीय दीदी जी के मुखारविंद से। वर्तमान समय आप माउंट आबू मुख्यालय में और उसके साथ देश विदेश में रामायण, महाभारत, अनेकों योग शिविर, अनेकों आत्माओं को आपने परमात्मा से जुड़ाया है, परमात्मा से उनका बुद्धि योग जुड़ाया। और साथ में अनेक प्रकार के यात्राएं भी आपने की, और मैं तो कहूंगी पूरे विश्व का भ्रमण आपने किया। और ऐसी कोई भी आत्मा नहीं होगी जिसको आपने ईश्वरीय संदेश ना दिया हो। तो ऐसे आदरणीय उषा दीदी जी हमारे समक्ष हैं। आपको बहुत सारे विश्व स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। तो ऐसे दीदी जी हमारे सामने हैं और आज हमको एकाग्रता के बारे में कि मन एकाग्र कैसे हो, एकाग्रता की शक्ति को कैसे बढ़ाएं। आदरणीय उषा दीदी जी,
ओम शांति। बाबा की प्रतिदिन की मुरली जब हम सुनते हैं तो मुरली में बाबा अक्सर हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे मन मना भव। और साथ में ये भी कहते हैं कि देह सहित देह के सर्व संबंधों से बुद्धि का योग हटाकर एक मुझ बाप में लगाओ। एकाग्रता उसी का नाम है कि जहां मन और बुद्धि दोनों ही एक लक्ष्य पर केंद्रित हो। आज हर एक दुनिया के अंदर ये शिकायत जरूर करता है कि हमारा मन ईश्वर में नहीं लगता है, मन भटक जाता है। कई बाबा के बच्चे भी इस शिकायत में बने रहते हैं, चाहना होते हुए भी मन की एकाग्रता विकसित नहीं हो पाती है। और उसका कारण यही है कि शायद हम मन को ईश्वर में लगाने का प्रयत्न करते हैं परंतु बुद्धि को फ्री छोड़ देते हैं। अब नेचुरल है कि जब बुद्धि फ्री हो जाएगी तो बुद्धि अनेक प्रकार के दृश्य देखती है और वो मन को भी विचलित सहजता से कर लेती है। इसलिए जब भी एकाग्रता की बात आती है तो मुख्य रूप से कितनी एकाग्रता हमें अपने अंदर लानी है। एक योगी का चित्र आप सामने लाओ तो योगी के चित्र में कितने प्रकार की एकाग्रता दिखाई है। एक है शारीरिक एकाग्रता। शारीरिक एकाग्रता माना कर्मेंद्रिय की चंचलता समाप्त, जहां कर्मेंद्रिय फुल कंट्रोल में हो, ये शारीरिक एकाग्रता है। अगर बाकी सारी इंद्रियां कंट्रोल में हो लेकिन दृष्टि इधर उधर होती रहे तो भी एकाग्रता नहीं बनती है। अगर 10 लोग कोई बातें कर रहे हैं और कान बार बार उस तरफ जा रहे हैं, क्या बात हो रही है, क्या बात चल रही है, जैसे भक्ति मार्ग में दिखाते कि हाथ में माला होती है, राम राम भी करते हैं लेकिन क्या बात चल रही है उसके तरफ ध्यान रहता है। तो ये कान इंद्रियां, आंखें इंद्रियां, ये भी अगर एकाग्र नहीं है लक्ष्य पर तो उसको एकाग्रता नहीं कहेंगे। यह हमारी आंतरिक एकाग्रता को भंग करने के लिए निमित्त बन जाती है। ठीक इसी तरह जब योगी के चित्र को देखते हैं तो अर्ध पद्मासन, पद्मासन या सुखासन में बैठा हुआ, जहां शारीरिक रूप से भी हाथ पैर आदि भी समेटे हुए हो, अगर बैठे हैं हिलते डुलते रहेंगे तो ये हिलते डुलते क्यों रहते हैं जब अंदर मन स्थिर नहीं है। तो सबसे पहली एकाग्रता जो आवश्यक है वो है शारीरिक एकाग्रता। कोई भी कर्मेंद्रिय हलचल की स्थिति में न हो तब कहेंगे कि हाँ एकाग्रता आ रही है। फिजिकल लेवल पर लोग इसीलिए दुनिया में जब हठ योग करते हैं तो वो समझते हैं कि फिजिकल एकाग्रता जब आती है, शारीरिक स्थिरता जब हमारे अंदर आती है तो धीरे धीरे मन भी शांत होगा। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को बताया मन आधार है। मन अंदर स्थिर नहीं है तो उसका प्रैक्टिकल स्वरूप कि कोई न कोई शारीरिक इंद्रियां भी हलचल में होती ही है। आप देखो किसी के बहुत विचार अंदर चलते होंगे तो कहीं पैर हिलाते रहेंगे, दूसरा कर कहें बंद करना क्या हिला रहे हैं, उसको डिस्टर्ब हो रहा है, तो पता चलता है अंदर उसका माइंड कितना फास्ट चल रहा है जो उसके पैर इतने हिल रहे हैं। ये एक जैसे आईने की तरह रिफ्लेक्ट होता है कि हम मन अंदर इतना हिल रहा है जो शारीरिक एकाग्रता भी बनती नहीं है। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे मन की एकाग्रता को पहले ले आना है। मन को एक लक्ष्य स्पष्ट देना आवश्यक है। लेकिन खाली मानसिक एकाग्रता से भी काम नहीं चलना है, तो शारीरिक एकाग्रता, मानसिक एकाग्रता, फिर बौद्धिक एकाग्रता, क्योंकि हमारा बुद्धि योग है, बुद्धि योग को भी बाबा में लगाना है। खाली मन मनाभाव नहीं होना है, मन मनाभाव के साथ बुद्धि का योग, यानी दोनों जब एक हो जाते हैं तो उसी का नाम तो एकाग्रता है। और तीसरा, चौथा, जिसको कहा जाए भावनात्मक रीति से भी हमें जुड़ना है, क्योंकि जैसे भक्ति में भी कहा गया कि भगवान भावनाओं का भूखा है, उसको निस्वार्थ विशुद्ध भावनाएं जब अर्पित करते हैं, उस शुद्ध भाव से हम योग में बैठते हैं तो एक आनंद की स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो मानसिक एकाग्रता, बौद्धिक एकाग्रता, भावनात्मक एकाग्रता और शारीरिक एकाग्रता, ये चार प्रकार की एकाग्रता, यानी ये चारों को एक हार्मनी में लाने की आवश्यकता है, यही है राजयोग। जब तक ये चार एक नहीं होते हैं, एक लक्ष्य पर नहीं रहते हैं, तो नेचुरल है कि एक भी अगर विचलित हुआ, भटका, तो वो दूसरे सबको भटकाएगा जरूर। भावार्थ यही कि माया जो है ना, वो क्या करती है, यही हमारी आंतरिक कोई ना कोई एकाग्रता को विचलित करने का प्रयत्न करती है। वो बहुत सुंदर एक कहानी मुझे याद आती है कि एक बार एक मालिक के पास बिल्ली थी, और बिल्ली को उसने इतना अच्छे से ट्रेन किया था कि वो बिल्ली के सिर पर मोमबत्ती रखता था और वो बिल्ली इतनी शांत और स्थिर बैठती थी, और उस कैंडल लाइट में वो चेस खेलता था। तो एक बार उसका एक मित्र आता है, उसको चेस खेलने के लिए आमंत्रित करता है, लाइट नहीं थी, अरे कोई बात नहीं बोले, और बिल्ली को बुलाता है और उसके सिर के ऊपर वो कैंडल रख दिया, और बिल्ली एकदम शांत होकर के स्थिरता से बैठी रही। आश्चर्य लगा बड़ा कि कैसे ये बैठी रही, इसका मन विचलित नहीं हो रहा है इधर उधर कहीं भी। कि इतने में उसने देखा कि एक चूहा जो था ना, वो आया, है ना, और जैसे ही चूहा आया ना, तो बिल्ली थोड़ी ऐसी हुई, लेकिन फिर मालिक ने उसके तरफ देखा तो शांत स्थिर हो गई वो। फिर वो चूहा उधर से उधर भागा। अब जैसे ही भागा, आखिर क्या होता है, बिल्ली चूहा देखते ही उसकी एकाग्रता समाप्त हो गई। बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, माया क्या है, माया चूही है जो बार बार हमारी एकाग्रता को भंग करने के लिए इधर उधर दौड़ी लगाती रहती है, और फिर हम कहते हैं कि अरे कितना अच्छा योग में बैठे थे, इतना आनंद का अनुभव हो रहा था, लेकिन ये माया जो है ना, छोड़ेगी नहीं हमें, वो कोई ना कोई ऐसा दृश्य इमर्ज कर देंगी, या कोई ना कोई इंद्रियों को चलायमान कर देंगी, और जैसे ही इंद्रियां चलायमान हो गई, कहीं से कुछ खुशबू आ रही है, भोजन की फर्स्ट क्लास खुशबू आ रही है, तो मन वहां चला जाएगा, आज क्या पक रहा है पता नहीं, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, कहीं आंखें चलायमान हो जाती, कहीं कान चलायमान हो जाते, तो कोई न कोई इंद्रियों को भी चलायमान करने के लिए निमित्त बन जाती है। नहीं तो बाबा कहे कि एकाग्रता उसको कहा जाए जो मन जरा भी विचलित न हो, कोई भी इंद्रिया हमारी विचलित न हो, और अंतिम समय में यही स्थिति तो हमें बनानी है। लेकिन उसके लिए ये एकाग्रता को विकसित कैसे करें, तो हमें एक एक चीज को अगर लेना है तो जैसे कहे कि मन मन मना भाव होने के लिए पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर मन जाता कहाँ है, कहाँ भटकता है। हमेशा देखा गया कि तीन चीजों में मन भटकता है ना? और वो तीन चीजें कौन सी है जिसमें मन सहजता से चला जाता है। पहला है कि मन को कुछ नहीं मिला तो भी व्यर्थ सोचने की आदत पड़ी हुई है, और जितना वो व्यर्थ में जाता है उतना लीकेज शुरू हो जाता है वहां से, और हमारी जो मेंटल एनर्जी है जो एकाग्रता में बहुत हमें उपयोगी है वो मेंटल एनर्जी हमारी ड्रेन होने लगती है। धीरे धीरे लीकेज चालू हुआ, आंतरिक मानसिक शक्ति क्षीण होने लगती है, तो मन कमजोर होते ही मन भटकता है। इसीलिए पहले तो हमें ये लीकेज को बंद करना है, और व्यर्थ को समाप्त करने की सहज विधि जो बाबा ने हमें दी है, समर्थ संकल्प को ले आओ, और समर्थ संकल्प का आधार है मुरली। मुरली खजाना है समर्थ संकल्पों का, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मुरली कभी मिस नहीं करनी है, क्योंकि मुरली का खजाना जिस दिन नहीं मिला उस दिन आप प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे कि कितना भी मन को लगाने का प्रयत्न करो मन लगेगा नहीं बाबा में, वो समर्थ विचार आएंगे नहीं, बार बार व्यर्थ की ओर चला जाएगा, क्योंकि कई जन्मों के पुराने संस्कार है व्यर्थ सोचने के, कोई एक जन्म का थोड़ी है, अनेक जन्मों का है। इसलिए ये लीकेज बंद करने के लिए मुरली कभी मिस नहीं करनी है, मुरली रोज सुननी जरूरी है। दूसरा मन कहां भटकता है, संबंधों में। कोई ना कोई संबंध खींचता रहता है, इसलिए बाबा ने कहा कि देह सहित देह के सर्व संबंध, देह के सारे संबंध को मन से हटाने का आधार क्या है, तो सर्व संबंध एक बाबा से जोड़ना। संबंधों में जब भटकता है तो या तो जिसके साथ अति प्रीत होती है उसी के प्रति जाएगा, या तो जिससे दुख प्राप्त हुआ है उसके पीछे जाएगा। कोई ना कोई संबंध आज के कलयुगी दुनिया के अंदर जब स्वार्थ के आधार पर है, और जहां स्वार्थ पूर्ति नहीं हुई तो वहां से दुख तो प्राप्त होना ही है, वो संबंध वो व्यक्ति वो जरूर कोई ना कोई रूप से दुखी तो करेगा ही करेगा, तो बार बार वो खींचता है। तो जहां अति प्रीत है वो खींचता है, या जहां पर वो संबंध में कोई ना कोई प्रकार की आसक्ति है, लगाव है, वो खींचता है। इसीलिए बाबा कहे सर्व संबंधों का सुख एक परमात्मा से लो। जब भक्ति में गाया त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव विद्याद्वरे द्रविणम त्वमेव, सारे संबंध बंधु सखा सारे संबंध एक के साथ जोड़ करके, और इतनी सुखद अनुभूति में चले जाओ जो परमात्मा से अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है, वो प्राप्ति तो कोई इंसान करा ही नहीं सकता है। तो इसीलिए कहा कि बाबा के साथ जब सर्व संबंध हमारे जुड़ जाते हैं तो उसमें जो अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है वो कोई भी इंसान से हो नहीं सकती है, कोई भी लौकिक संबंधों से कभी हो नहीं सकती है। तो इसलिए बाबा ने अल्टरनेट दिया है हमें, और ये अल्टरनेट इसीलिए दिया कि उसमें आप अपने मन बुद्धि को एकाग्र करो तो फिर ये शिकायत सदा के लिए हमारी समाप्त हो जाएगी। और तीसरा, हमारा मन भटकता है इसमें। आज जिस भौतिक दुनिया में हम जीते हैं, इस भौतिक दुनिया के अंदर हर रोज कुछ न कुछ नया निकलता रहता है, कोई न कोई नए गैजेट्स आते रहते हैं, कोई न कोई नए साधन आते रहते हैं, और वो नए साधन नई सुविधा उसकी एडवर्टाइजमेंट इतनी होती है चारों ओर कि मन भी प्रलोभन में आ जाता है कि चलो ये लेकर के देखे, फिर भले बाद में पश्चाताप हो कि फालतू गया पैसा, नहीं लेते थे तो अच्छा होता था। बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि बच्चे ये साधन अंतिम समय में तुम बच्चों के लिए ही बना है, लेकिन इसकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, डिटैच्ड होकर के उसको यूज करो, और यूज करके फिर मालिक बन करके उसको साइड में भी करो। ये नहीं कि उसकी अधीनता आ जाए, क्योंकि जहां अधीनता होगी वहां मन विचलित स्वाभाविक रीति से होगा। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को स्लोगन दिया है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, चाहना जो थी पार ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करने की, वो जब मिल गया तो बाकी क्या रहा, है ना। तो इसीलिए पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। बाकी रोज की ये नई नई चीजें तो निकलती रहेंगी जो मन को विचलित करने के लिए ही माया बनवाती भी है, लेकिन जो चीज हमारे काम की नहीं है, हमारे मतलब की नहीं है, उसके तरफ हमारी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। तो ये तीन चीजों में मन भटकता है, एक तो व्यर्थ में जाता है, एक संबंधों में जाता है, और एक कोई न कोई इच्छाओं के पीछे मन भटकता है। ये तीनों का सॉल्यूशन बाबा ने हमें दे दिया है, और उस चीज को स्मृति में ले आओ, फिर देखो आपका मन जाएगा नहीं। दूसरी बात कि मन को जब लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है कि मुझे अपने जीवन में ब्राह्मण जीवन को किस दिशा में ले जाना है, ये लक्ष्य बहुत स्पष्ट हो, तीन चीजें चाहिए उसके लिए, लक्ष्य, लक्षण और लक्ष्मण रेखा, ये तीन चीजें मन को बांधने के लिए जरूरी है। लक्ष्य स्पष्ट हो, मुझे अपने इस जीवन को कौन सी दिशा में ले जाना है। कई लोग ऐसे हैं बीच में झूला खा रहे हैं, उन्हें यही पता नहीं कि मुझे पक्का ब्राह्मण बनना है या शूद्र तरफ जाना है, उस जीवन के तरफ पुराने जीवन तक जाना है, उस दिशा में जाना है या इस दिशा, ये माइंड मेकअप ही नहीं कर पाता है। और इसलिए अगर कोई पुराने दोस्त मिल गए, वो खींचते तो वहां चले जाते हैं, फिर वहां से कुछ धोखा मिला, फिर कहते अरे बाबा तो कहता ही है ना, फिर बाबा याद आता है, फिर बाबा के तरफ आता है, तो ऐसे झूलने में मजा नहीं है। एक लक्ष्य बहुत क्लियर हो, और बाबा ने भी हम बच्चों को लक्ष्य दिया है बाप समान बनना। अब ये लक्ष्य हमारा बहुत क्लियर हो दिमाग में कि मुझे बाप समान बनना ही है, हर एक एक्टिविटी में, हर एक सोच में, ये मीटर लेकर के देख लो कि क्या ये स्थिति बाप समान है, क्या ये सोच बाप समान है, क्या ये वृत्ति मेरी बाप समान है, दृष्टि से जब देखते हैं क्या ये दृष्टि मेरी बाप समान है, है ना। हर बात में एक मीटर है, ब्रह्मा बाबा के सामने तो कोई मीटर नहीं था, फिर भी अचीव कर लिया उस स्थिति को। तो इसीलिए बाबा कहे कि बच्चे उस बात को सदा सामने रखो और बार बार अपनी भेंट करते रहो कि क्या ये स्थिति, ये विचार, ये कर्म मेरा बाप समान है। तो लक्ष्य बहुत क्लियर हो, लक्ष्य धुंधला ना हो, पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे, पता नहीं वो तो ब्रह्मा बाबा थे हम कैसे बन पाएंगे, पता नहीं, जहां ये कमजोरी के विचार आए, माना लक्ष्य स्पष्ट नहीं है। और जब लक्ष्य ही क्लियर नहीं तो उसको कभी अचीव नहीं कर सकते, उसको कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए पता नहीं वाला कमजोर संकल्प क्रिएट ना करो, मुझे पता है मैं ही कल्प पहले बनी थी, फिर से बन रही हूं और अनेक कल्प मैं ही बनूंगी, ये दृढ़ संकल्प। तो एकाग्रता को विकसित इसीलिए करना है क्योंकि जहां एकाग्रता है वहां दृढ़ता है, और दृढ़ता है वहां सफलता है। ये तो लक्ष्य क्लियर है, फिर लक्षण उस अनुसार, लक्षण कौन से होने चाहिए, तो लक्षण में चाहिए गंभीरता, बचपना ना हो, अभी बचपन के दिन पूरे हुए, बचपन में वो बातें आती है कभी मन इधर उधर हो, लेकिन अब हमारे अंदर वो गंभीरता, मैच्योरिटी जिसको कहा जाए, और उसमें भी आजकल दुनिया के अंदर भी ये शब्द निकला है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, बहुत जरूरी है आध्यात्मिक परिपक्वता, ये गंभीरता अपने स्वरूप में। जैसे मम्मा का स्वरूप देखते हैं तो गंभीरता की मूरत दिखाई देती है, ठीक इसी तरह वो गंभीरता हमें भी ले आनी है, वो परिपक्वता, धैर्यता, शांति, ये लक्षण मेरे अपने जीवन के अंदर मुझे विकसित करने हैं। संडे की मुरली, एक तारीख की जो मुरली आ रही है नए साल की, उसी में बाबा ने ये बात बहुत स्पष्ट किया है, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। तो इसीलिए लक्ष्य और लक्षण दोनों जहां समानता के उसमें आएंगे, फिर लक्ष्मण रेखा, मन को कुछ बातों में बांधना पड़ेगा हमें, उसके सामने एक लकीर खींचनी होगी, इससे आगे तुम्हें नहीं जाना है, उससे आगे तुम्हें सोचना भी नहीं है, नहीं तो ये रेखा क्रॉस किया माना माया रावण तुझे उठा करके ले जाएगा और फिर बहुत संघर्ष करना पड़ेगा वहां से आने के लिए, इसलिए ये एक लिमिट मुझे अपने मन को बांधने के लिए दे देना है, लक्ष्मण रेखा खींच देनी है, बस यहां तक, इससे आगे नहीं। रिश्तों में, संबंधों में, कार्य में, कहां पर भी हम हैं, क्योंकि बाबा ने हमें कर्म योगी बनाया, न कर्म छोड़ना है, न अपनी जिम्मेवारी छोड़नी है, न घर गृहस्थ छोड़ना है, सब कुछ करते हुए उसमें ही हमें अपने आप को एक ऐसे सुंदर मर्यादाओं के बंधन में बांधना जरूरी है। यह है लक्ष्मण रेखा, मर्यादा के बंधन में अपने आप को बांधो, क्योंकि जब से लेकर के ये मर्यादाओं का बंधन टूट गया तब से लेकर के कलयुगी दुनिया बहुत फास्ट विकसित होने लगी, और आज वही कलयुग की बातें जो है इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई जो लगता है कैसी ये दुनिया हो गई। इसलिए कहीं हम उस बहाव में न चले जाएं, इसलिए मुझे अपने आप को मर्यादा में बांधना जरूरी है, ये मेरी मर्यादा है, मेरे जीवन की मर्यादा है, इसमें मुझे रहना है तो मैं सुरक्षित प्रोटेक्टेड रहूंगी, ये लक्ष्मण रेखा मेरे मन को विचलित नहीं होने देगा। दूसरी बात, बौद्धिक एकाग्रता, बुद्धि क्लीन एंड क्लियर, हमारी आदरणीय दादी जानकी जी हमेशा कहती थी क्लीन एंड क्लियर हो, नो कंफ्यूजन बुद्धि के अंदर, ये करे, ऐसा करे, ऐसा करे, इसने ऐसा किया, मैं ऐसा करूं, मैं नहीं, मुझे अपना मार्ग बहुत क्लियर हो, स्पष्ट हो और स्वच्छ हो। बुद्धि जितनी हमारी स्वच्छ होगी, क्लीन होगी, उसमें कोई भी प्रकार का मैल नहीं होगा, उतना कंफ्यूजन से फ्री रहेंगे और मन बुद्धि की एकाग्रता बहुत सहज बनेगी। दूसरी बात बुद्धि के लिए है कि ये देखना है कि मेरी बुद्धि कंस्ट्रक्टिव बुद्धि है या डिस्ट्रक्टिव बुद्धि है। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव किसको कहा जाता है, कि मेरी बुद्धि सुई धागे का काम कर रही है या कैंची का काम कर रही है संबंधों में, क्योंकि वो वाइब्रेशन हमारी बुद्धि को बहुत इफेक्ट करते हैं। कैंची का काम करना माना किसी की निंदा कर ली, किसी का परचिंतन कर लिया, किसी की ग्लानी कर दी, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया, मुझे पता ही नहीं फिर भी सुनी सुनाई बातों पर, यह है डिस्ट्रक्टिव बुद्धि, यह है कैंची का काम करने वाला। जितनी हमारी बुद्धि डिस्ट्रक्टिव होगी, जिसका हम नुकसान कर रहे हैं, हमें पता नहीं है कि आज मैंने पर चिंतन करके किसका मैंने नुकसान किया, लेकिन सूक्ष्म में भी जिसका नुकसान होता है उसके वाइब्रेशन चलेंगे या नहीं चलेंगे, विचार चलेंगे या नहीं चलेंगे, और वो विचार के वाइब्रेशन मुझे पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे। कई लोगों को जैसे इंटरेस्ट होता है इस बात का, पर चिंतन का, जो बाबा हमेशा मुरली के अंदर, बच्चे झरमुई झरमुई नहीं करो, ये है कैंची का काम करना। मुझे कैंची का काम नहीं करना, कोई रिश्ते बिगड़े हैं मैं सुई धागे का काम करके सिलाई करूं, किसी का जीवन बन जाए ऐसा काम कर, उसकी जो दुआएं मिलेगी वो मेरे पुरुषार्थ में मुझे बहुत आगे ले जाएगी। तब कहा कि हमारी बुद्धि, स्वयं को देखो, मेरी बुद्धि कौन सी है। अगर मुझे बौद्धिक एकाग्रता को विकसित करना है तो मुझे सुई धागे वाली बुद्धि अपनी बना देनी है। आज के बाद हर एक की विशेषता को देखते हुए, कोई अगर किसी की निंदा ग्लानी करता भी आपके सामने, तो आप ये कह सकते हैं ये विशेषता भी तो है उसकी, उस विशेषता को तो देखो, उस बात को पूरा मेकअप कर दो, सिलाई कर दो, जो उसने काटने का काम किया उसको सिलाई कर दो। देखो कितनी दुआएं मिलती है, भगवान की भी दुआएं मिलेगी और उस आत्मा की भी अंदर से आपके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, दुआएं मिलेगी। तो ये एक लक्ष्मण रेखा, ये एक मर्यादा की रेखा हमें अपनानी है कि मेरी बुद्धि कंस्ट्रक्टिव हो, डिस्ट्रक्टिव ना हो। मैं हर एक की विशेषता का वर्णन करूं, हर एक के लिए शुभ बोलूं, हर एक के प्रति अगर कहीं बोलना भी पड़े तो, और शुभ भावना शुभ कामना को प्रवाहित करूं, दुआएं दो दुआएं लो। ये हमारी दादी जी हमेशा कहते, ये सीजन है और ये दुआएं जितनी इकट्ठी करेंगे ना, अंतिम पेपर में ये बहुत मदद करेगी पास होने के लिए, पास विद ऑनर होने के लिए। और जितना कैंची का काम किया होगा क्या होगा, वो इतने प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे अंत में, जो कभी भी आप उसमें से बाहर नहीं आ पाएंगे और उसी में अंतिम शरीर छूटेगा। तो इसीलिए दुनिया के अंदर जीना है तो भाई सबके साथ, बाबा कहते निभाते हुए, तो निभाने के लिए सुई धागे का काम करते चलो। वो कहेगा हाँ, जब से वो भगवान के घर में जाने लगा है ना, ये अच्छी बात उसके अंदर आ गई, नहीं तो पहले ये क्या था, सबकी निंदा ग्लानी करता रहता था। तो इसीलिए ये बात बहुत जरूरी है। एक सत्य घटना आपको सुनाना चाहती हूँ। कुछ समय पहले एक माता आई थी हमारे पास में और कहते थे उसके अंदर प्रवेशता है, दो तीन आत्माओं की प्रवेशता हो गई है। अच्छा, ये प्रवेशता क्यों हुई? तो फिर उसको किसी ने कहा भाई या लाई मधुबन में, ताकि भाई उस मधुबन में आएगी तो ठीक हो जाएगी, ये वातावरण पवित्र वातावरण में वो आत्माएं उसको छोड़ देंगे। लेकिन वो आत्माएं कोई जल्दी छोड़ने वाली नहीं होती है, क्योंकि कोरोना में इतनी आत्माओं ने शरीर छोड़ा है, इतनी अधूरी इच्छाएं उनकी रही हुई है और इतने बॉडीज तैयार नहीं है, और उनको अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करनी है तो कहां से करेंगे, कहां से करेंगे? तो जो कमजोर होगा तो कमजोर को ढूंढेंगे या नहीं ढूंढेंगे? तो वो माता जो थी जिसको लेके आए, और फिर उनको यहां किसी ने कहा इतना दिन रहे कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, यहां का वातावरण भी अशुद्ध हो रहा है, जिसका जो डॉक्टर होता है ना उसके पास ले जाना पड़ता है। तो उसको आखिर वो लेके गए परिवार वाले, जहां भी झाड़ फूक करते होंगे वहां लेके गए। तो कहते हैं कि उनको पूछा गया वो आत्माओं से कि भई आपने इसमें क्यों प्रवेश किया, तो वो आत्माओं ने बताया कि हमने उनके घर के पास में एक झाड़ था, उस झाड़ पर हम लोग तीनों रहते थे। वो तीन आत्माएं ऊपर रहती थी, उसके झाड़ घर के पास एक झाड़ था। लेकिन हमने देखा कि जब भी ये आती थी और जाती थी ना, ये हमेशा किसी न किसी की निंदा ग्लानी करती रहती थी, हमेशा पर चिंतन, कभी किसी का अच्छा नहीं बोला उसने। तो तब हमें महसूस हुआ कि इससे अच्छा स्थान हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकता है अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। वो आत्माओं ने सुनाया। तो बाबा जो कहते हैं कि जो निंदा ग्लानी, क्यों बाबा कहते थे कि पर चिंतन पतन की जड़ है, तो ये प्रैक्टिकल उदाहरण है कि पर चिंतन जो कर रहा था वो इतना आंतरिक रीति से कमजोर था कि वो आत्माओं ने सोचा कि इससे बढ़िया स्थान हमारे लिए कोई है ही नहीं, और इसमें प्रवेश कर लेना है। और हम प्रवेश हो गए तीनों। अच्छा, तीनों प्रवेश हो गए तो उन्होंने अपनी डिमांड रखना चालू किया, हम तभी इसको छोड़ेंगे जब हमारी कुछ इच्छाएं हैं वो पूरी किया जाए। अच्छा, उनको पूछा आपकी क्या इच्छाएं हैं, तो एक ने कहा कि मुझे नॉनवेज खाने की बहुत इच्छा है, काफी समय हो गया मुझे नॉनवेज खाना है। दूसरे ने कहा मुझे शराब पीनी है, बहुत इच्छा है मेरी शराब पीने की। तीसरे ने कुछ और कहा, मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन ये दो बातें तो बताई कि ये दो हमारी इच्छाएं पूरी करो। अब वो 20 साल से ज्ञान में चल रही है, शुद्ध सात्विक भोजन में, है ना। लेकिन तब वो डॉक्टर ने कहा भाई इनकी जो डिमांड है वो पूरी करो, नहीं तो ये छोड़ेगी नहीं। फिर जब उनसे वचन लिया कि भाई आप अगर दिया तो छोड़ देंगे इस आत्मा को, बोले छोड़ देंगे, बोले दुनिया में बहुत आत्मा है, तुम वहां जाओ ना, इसको छोड़ दो, क्या पहले हमारी डिमांड पूरी करो तब हम छोड़ेंगे। फिर आखिर उनको रंगीन कपड़ा पहना करके एक होटल में लेके गए, और होटल में ले जा करके नॉनवेज खिलाया, शराब पिलाया, तो पर चिंतन पतन की जड़, 20 साल की तपस्या क्या हो गया एकदम। वो सांप सीढ़ी का खेल नहीं आता है, सांप सीढ़ी ऊपर तक पहुंच गए और सांप ने डसा तो एकदम नीचे आ गए, ये सांप डसता है पर चिंतन पतन की जड़। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे आत्मचिंतन उन्नति की सीढ़ी है और पर चिंतन पतन की जड़ है। इसीलिए अभी जैसे जैसे अंतिम समय की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ये बात हमेशा बुद्धि के अंदर रखो कि अब मुझे कोई सांप डसना नहीं चाहिए, चाहे पर चिंतन वाला ही क्यों ना हो, भले दो चार लाइन नीचे आधा आ जाए तो भी कितना नीचे उतार देगा, और फिर समय ही नहीं होगा तो ऊपर चढ़ने का, वो सीढ़ी नहीं मिलेगी। तो सांप सीढ़ी वाला जो खेल है ना, ये अभी फुल फोर्स में चलने वाला है। इसलिए अपनी बुद्धि को कंस्ट्रक्टिव रखो, डिस्ट्रक्टिव नहीं रखो। तीसरी बात, बुद्धि के लिए निश्चयात्मक बुद्धि होकर के पुरुषार्थ में लग जाओ। निश्चयात्मक बुद्धि, निश्चय बुद्धि विजयंती कहा जाता है। तो निश्चयात्मक बुद्धि कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, अब इधर उधर कहीं बुद्धि जाए नहीं, भटके नहीं। जितनी हमारी बुद्धि स्थिर होगी उतना हमारी बुद्धि यथार्थ निर्णय समय पर कर सकेगी, और जितनी हमारी बुद्धि कंस्ट्रक्टिव प्योर होगी, क्लीन होगी, उतना कैचिंग पावर और टचिंग पावर अंतिम समय जो चाहिए कि बाबा की टचिंग को हम कैच कर सके यथार्थ रूप में, वो तभी हो सकेगी। तो बौद्धिक एकाग्रता बहुत जरूरी है। और तीसरी है भावनात्मक एकाग्रता। भावनात्मक एकाग्रता यानी भावनाओं में इतनी ईश्वर के प्रति हमारी प्रीत हो। तो प्रीत जहां है वहां तो सब महसूस होगा कि बहुत अच्छा अनुभव होगा। जैसे बाबा के प्यार में समाने का अनुभव तभी हो सकता है जब भावनात्मक एकाग्रता आ जाए, उस प्रीत में समा जाए, साथ ही साथ इमोशनल स्टेबिलिटी, भावनात्मक संतुलन बहुत आवश्यक है। अगर संतुलन नहीं है, लंगर उठा हुआ नहीं है, लंगर लगा हुआ है कहीं पर, भावनाओं का लंगर कहीं ना कहीं किसी के साथ अगर जुड़ा हुआ है, तो अंदर में इमोशनल स्टेबिलिटी कभी आ नहीं सकती है। इसीलिए देखो मेरा लंगर उठा है, नहीं तो जैसे वो कहानी में है कि भाई एक व्यक्ति सारी रात वो चप्पू चलाता रहा और सुबह उठकर देखा वहीं का वहीं है, क्योंकि लंगर उठाना ही भूल गया था। तो ये हाल हमारा नो कि पुरुषार्थ में हम जा रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, दौड़ दौड़ के कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन लंगर ही नहीं उठा है। तो जब लंगर ही नहीं उठा है, लंगर लगा हुआ है, फिर अंत में हमें रियलाइजेशन हो, अरे ये क्या हुआ, लंगर ही लगा हुआ था, लंगर उठा ही नहीं था। तो वही के वही है। इसीलिए जब महसूस होता है कि आगे बढ़ नहीं रहे हैं, संडे की मुरली में बाबा ने यही कहा कि कभी कभी चलते चलते ऐसा लगता है अमृत वेला भी किया, मुरली क्लास भी किया, सेवा भी किया, धारणा भी हमारी सही है, लेकिन फिर भी आज खुशी नहीं है, आज उदासी लग रही है, मन जैसे खुश नहीं अंदर से, ये फीलिंग क्यों आती है? इसीलिए आती है कि कहीं न कहीं हमारा लंगर उठा हुआ नहीं है, लगा हुआ है, उपरांता और डिटैचमेंट, जितना न्यारापन होगा अपने अंदर उतना लंगर सहजता से उठ जाएगा। तो इसीलिए डिटैचमेंट जरूरी है और लंगर उठने के लिए उपरांता जरूरी है कि अब हमें जाना है अपने घर। तो ये स्मृति हमारी जितनी पक्की होती जाएंगी तो आत्मिक स्मृति, परमात्मा स्मृति सहज बनी रहने से नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा सहज हो सकेंगे। तो इसीलिए ये तीनों एकाग्रता और फिर शारीरिक एकाग्रता, जहां कर्मेंद्रियां विचलित न हो, कर्मेंद्रियां हमारी लगी रहे। क्यों? क्योंकि जितनी हमारे में एकाग्रता होगी तो उसे प्राप्ति क्या होगी? प्राप्ति है कि कोई भी बड़े से बड़े पेपर को क्रॉस करना आसान होगा, कोई भी विघ्न को समाप्त करना आसान होगा। एकाग्रता की शक्ति वो है, एक स्थान पर बैठ करके आप किसी को भी मैसेज देंगे तो वो आपके मैसेज को सहजता से कैच कर सकेंगे। जितना आपका बुद्धि योग बाबा से होगा, बाबा की टचिंग होगी, आप समय पर उस स्थान से हट करके कहीं और चले जाएंगे। जैसे कई बार ये महसूस होता है कोई पीछे से कोई मारने आता है, या कहीं आप एक वृक्ष के नीचे खड़े हो, वो डाल टूटने वाली है और उसके दो मिनट पहले आप खिसक करके कहीं और जाते और वो डाल टूटती है, लगता अगर मैं वहीं थी, अगर वहां होती थी तो मेरे सर को फाड़ देती थी ये तो डाल। लेकिन ये किसने खिसकाया? क्योंकि बुद्धि क्लीन और क्लियर थी तो बाबा ने जैसे ही कहा तो अपने आप ऑटोमेटिकली आप वहां से हट गए। तो ये फील होगा अंतिम समय कि बाबा जैसे आपको गाइड कर रहा है, बाबा जैसे आपको चला रहा है, वैसे आप सहजता से चल जाएंगे और चल करके दूसरी ओर चले जाएंगे और आप सेफ हो जाएंगे। तो इसीलिए ये भावनात्मक रीति से जुड़ाव बाबा के साथ, इतनी लगन में मगन सहजता से हो तो बाबा की हर एक बात को सहजता से कैच कर सकेंगे और आप उसका अनुभव करेंगे प्रैक्टिकल जीवन में कि वहां से खिसक गए और उसके बाद जो हुआ तो आप आश्चर्य खाएंगे, कैसे बाबा ने मुझे वहां से खिसका दिया उस समय। तो ऐसे अनेक प्राप्तियों का अनुभव आप सहजता से कर सकते हैं, है ना। और जैसे बाबा कहते हैं कि उस लगन में मगन होकर के जब समा जाते हैं, खो जाते हैं, तो और कोई भी बात हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती है, हमारे मन बुद्धि को खींच नहीं सकती है। और यही स्थिति हम अपनी बनाना चाहते हैं, यही तो बाप समान स्थिति है कि अंतिम समय मेरी ये स्थिति रहे कि एकदम बाबा की लगन में मगन हो करके मैं खो जाऊं और उसी में ही सहजता से देह से अलग हो करके अपने धाम परम धाम की ओर जाने लगूं। तो इसीलिए बाबा कहे, आप ऐसी जब लगन मगन वाली स्टेज होगी तो विकर्म को भस्म करना आपके लिए आसान होगा, यही विकर्मों को भस्म करेगा। अभी जो हम योग कर रहे हैं, उस समय कोई बुरा विचार नहीं आता है, कोई बुराई नहीं होती है किसी की, बहुत अच्छी बात। लेकिन इतना पावरफुल योग भी नहीं है जो विकर्मों को दग्ध कर सके। वो बीज रूप अवस्था जो लगन में मगन वाली स्टेज है, वही आपके विकर्म को, लगन मगन अगन, वही अग्नि को क्रिएट करती है जो विकर्मों को विनाश कर सके। तो ऐसी लगन लगी, जैसे मीरा गाती थी, ऐसी लगन लगी जो मगन हो गई, और वही मगन स्टेज लगन अगन को क्रिएट करती है और विकर्मों को सहजता से दग्ध कर सकती है। तो ये विकर्मों को दग्ध करने वाली स्टेज है एकाग्रता, और उस एकाग्रता से ही स्वयं के अंदर दृढ़ता भी आएंगी और सफलता को भी सहज अनुभव कर सकेंगे। तो इसीलिए एकाग्रता की स्टेज आज के समय में बहुत आवश्यक है। अच्छा, ओम शांति।
बसेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा,
मन में इसी धुन का है बसेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा।
सुख शांति का मर्म सुनहरा मैं बाबा का, बाबा रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया,
जिसने जीवन दान दिया लाखों है एहसान किया, रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया।
ज्योति बिंदु ने किया सवेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा,